ओम शांति। बेहद की यज्ञ भूमि पर रुद्र ज्ञान यज्ञ में अगर किसी कर्म के आदि मध्य अंत को बिना जाने कोई भी कर्म विकर्म या व्यर्थ कर्म होता है जिससे बहुतों के संकल्प चलते तो आत्मा पर उसका सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट आती है। और भी अगर उसे देख अन्य भी वह कार्य करने लगे और यज्ञ के कार्य में रुकावट आने लगे तो औरों द्वारा किए कर्मों का भी बोझ हम पर चढ़ता है और हमारा विकर्म बढ़ता है। समय पर सही शिक्षा मिल जाए तो पाप बढ़ता नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाता है और परिवर्तन करना सहज हो जाता है। पाप छिपाने से पाप बढ़ता है, वृद्धि को पाता है। तो यही आज का विषय है, पाप छिपाया पाप बढ़ाया। हमारी गलतियां हमारे जीवन में वायरस का कार्य करती है। अगर हर समय स्कैनिंग, इसलिए हर समय स्कैनिंग की जरूरत होती है और स्कैनिंग अर्थात चेकिंग करने के लिए यंत्र जो बाबा ने दिया है वो है दिव्य बुद्धि का। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग या स्कैनिंग करने से यथार्थ चेकिंग हो जाती है। हमें कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। अगर कोई विकर्म होता है तो वह बाबा के सामने रखने से डायरेक्शन मिलती है, युक्तियां मिलती है विकारों पर जीत पाने की। बाबा रूहानी सर्जन है। सर्जन के आगे बीमारी छिपाने से, विकर्मों या पापों को छिपाने से पाप वृद्धि को पाते हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है और सजाएं भी खानी पड़ती है। अगर बातें बाबा को बताएं तो आधा माफ हो जाता है। बाबा से श्रेष्ठ डायरेक्शन तथा युक्तियां मिलती है और पाप कर्म व कमजोरियों का प्रभाव भी कम हो जाता है। बाबा परिवर्तन करने की भी शक्ति देते हैं, वरना गलतियों को बार बार दोहराने से वह एक संस्कार बन जाता है और परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा हमें चेकिंग और चेंजिंग करना जरूरी होता है। सबसे बड़ा पाप है ही देह अभिमान में आना। इससे अन्य चार विकारों की प्रवेशता हो जाती है। By law of multiplicity, हम हर समय देह अभिमान के वश हमारे पापों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम देह के साथ अटैच्ड है। हमसे जो भी कर्म होता है देहभान में वह विकर्म ही बनता है। जब निरंतर बाबा की याद में रहे तो देही अभिमानी होंगे, विकर्म विनाश होंगे, नए विकर्म बनेंगे नहीं तथा ऊंच पद प्राप्त होगा, शक्तियों का स्टॉक भी जमा होगा और ज्ञान रत्नों की गहराई में जो जा सकेंगे, बाबा से नई नई पॉइंट्स की टचिंग भी होगी। विकर्म या पाप कर्म कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? तो बाबा ने तो कर्म करने के पहले चेक करने को बोला। हाँ, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने समर्थ निर्णय लिया, नहीं लिया तो विकर्म बन गया। जितनी बार बुद्धि गलत या असमर्थ निर्णय लेगी उतनी बार वह कमजोर होती जाती है। बुद्धि की पावर कम होती है, आत्मा की शक्ति भी कम हो जाती है, इससे स्व परिवर्तन डिफिकल्ट हो जाता है। बार बार गलतियों को मन में दोहराने से वह एक संस्कार बन जाता है और कर्मेंद्रियों द्वारा किए हुए विकर्मों की स्मृति मन बुद्धि को ज्यादा विकर्म करने पर विवश करता है। आत्मा से न चाहते भी गलतियां हो जाती, क्योंकि कर्मेंद्रियों को अनुभव है तो वह बार बार अनुभव करने के लिए प्रवृत्त होती रहती। इससे बचने का तथा परिवर्तन करने का एक ही तरीका है, शरीर से डिटैच होना, अशारीरिक अवस्था तथा आत्मिक स्थिति का अभ्यास। क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार बने हुए हैं और एक ही जन्म में निर्विकारी नहीं लेकिन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। किसी भी कर्मेंद्रिया के साथ खेलना तथा उससे सूक्ष्म प्रकार का भी आनंद प्राप्त करना या आनंद की या प्लेजर की अनुभूति करना विकर्म या पाप कर्म है। फिर चाहे वह बार बार नाखून चबाना हो, रखी हुई किसी पेन या वस्तु को हिलाते रहना हो, या पैरों को बेंच या टेबल के सपोर्ट से हिलाते रहना, ये सारे कर्म जो आत्मा को देह के साथ बंधन में लाते हैं और विपरीत तरीके का आनंद या प्लेजर का अनुभव कराते हैं, यह सारे पाप कर्म या विकर्म है, क्योंकि यह आत्मा को शरीर के साथ अटैचमेंट में लाते हैं। जब हम ब्राह्मण बनकर और संपूर्ण पवित्र बनने का संकल्प करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज जो हमें देह अभिमान या देह भान में लाती है, ये सारी चीजें विकर्म में ही कंसिडर होती है। तो इससे आत्मा सूक्ष्म एंजॉयमेंट का अनुभव करती है, सूक्ष्म प्लेजर का अनुभव करती है, इसीलिए विकर्म बनता है। क्योंकि जब भी हम देह भान में आए द्वापर से, तब विकर्म बनना चालू हो गया। तो देहभान ही मुख्य विकर्मों की जड़ है। जब तक कर्मेंद्रियों द्वारा आनंद की अनुभूति करने में बिजी या व्यस्त रहेंगे, तब तक आत्मा अभिमानी नहीं बन सकेंगे। और शरीरी बन लगन में मगन अवस्था तथा अतीन्द्रिय सुख में झूलने का अनुभव नहीं होगा। जीवा द्वारा मतलब टंग द्वारा खान पान का रस लेना, किसी भी वस्तु प्रति ऑब्सेशन, चाहे सादा भोजन भी खाते हो लेकिन अगर किसी पदार्थ का, फॉर एग्जांपल कोई खिचड़ी भी खाता हो, कोई कहे कि हमें खिचड़ी खाते हैं रोज, हमें कोई टेस्ट का ये नहीं, लेकिन खिचड़ी के साथ भी अगर ऑब्सेशन हो गया तो वो भी मतलब किसी को आदत होती है कि हमें रोटियां ही चाहिए, हमें राइस नहीं चाहिए, या किसी को आदत होती है हमें राइस ही चाहिए, कुछ कुछ होता है कि नहीं हमें सलाद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब भी ऑब्सेशन है, ये सब भी आदतें हैं और संस्कार बन जाता है। तो ये भी तो अगर ऑब्सेशन हो गया तो वो भी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता। तो भोजन किस अवस्था में करते हैं, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या हम बाबा की याद में करते हैं। अगर नहीं तो विकर्म बन रहा है, क्योंकि कर्मेंद्रियों को आनंद की अनुभूति कराते हैं हम, टंग को आनंद की अनुभूति कराते हैं, कभी शक्कर ज्यादा चाहिए तो कभी नमक ज्यादा चाहिए, तो और ही अतीन्द्रिय सुख से हम दूर होते जाते हैं। अच्छा भोजन देखकर मुख में वासना या जिह्वा लोलुप्य जागृत होना, रसनेन्द्रिय द्वारा रसास्वाद लेने की इच्छा भी विकर्म है, सूक्ष्म पाप कर्म है। जब शरीर डेड बॉडी की तरह हो जाएगा, कोई भी चंचलता व अतीन्द्रिय व कर्मेंद्रिय का प्रवृत्त या आकर्षित होना किसी भी वस्तु प्रति बंद हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा और मन बुद्धि एक की ही याद में निरंतर लगे रहेंगे, तब आनंद की अनुभूतियों में इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज अनुभव होगी, तब निर्विकारी बन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे और पाप कर्मों से सदा के लिए छूट सकेंगे। आत्मा को आदत पड़ी है शरीर को यूज करने की और शरीर द्वारा यूज होने की, तो इस शरीर और आत्मा के बंधन को ही समाप्त करना है तो आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर रहना है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो देह भान में, तब उसका इम्प्रेशन बुद्धि में बैठता है और उसके साथ रिलेटेड फीलिंग्स संस्कार के रूप में ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आत्मा में समा जाती है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव, अर्थात देह अभिमान देह भान वश किए हुए कोई भी कर्म के संस्कार न बने और पिछले संस्कारों का मन बुद्धि तथा कर्मेंद्रियों पर प्रभाव ना पड़े। आत्म अभिमानी स्थिति से कोई विकर्म नहीं बनेगा, विदेही बन विदेही की याद में रहते विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कुछ मुरलियों में पाप कर्म अर्थात विकर्म के बारे में बहुत ही कड़े शब्द भी कहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि कोई भी 10th May 72 की मुरली में बाबा कहते हैं कि कोई भी पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना कि पाप देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहां बाप भूल जाता है वहां पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसीलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म या व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता, इसीलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया माफी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। ओम शांति।